प्रैक्टिकल टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे। स्थिति चाहते हुए भी क्यों नहीं बनती। आप सबको हिस्सा लेना है। कुछ टीचर बहने बुद्धिमान आगे आ जाओ, थोड़ी आगे आ जाओ बहनों, नीचे बैठ सकती हैं। श्रेष्ठ स्थिति चाहते हुए भी क्यों नहीं बनती। हिस्सा लेना है। पहला संकल्प, क्या सचमुच हम चाहते हैं? सभी अपने से पूछेंगे, श्रेष्ठ स्थिति किसे कहते हैं और क्या सचमुच हम श्रेष्ठ स्थिति बनाना चाहते हैं, या सुना है तो हम भी सोच रहे हैं कि बननी चाहिए। पहला चिंतन ये, ठीक है या नहीं? जब कोई मनुष्य सच्चे दिल से कुछ करना चाहता है तो करता है या नहीं? प्लानिंग भी बनाता है, साधन भी इकट्ठे करता है, करता है। दादी ने जब 67th शिवरात्रि थी, 67th, सब बहनों को कह दिया 67 प्रोग्राम करने, सबको, सबने कर दिए। जो तब थे उनको याद होगा। मनुष्य कुछ करने की ठान ले तो वो उसकी प्लानिंग करता है, कुछ छोड़ता है तो कुछ करता है। कुछ छोड़े बिना कुछ किया नहीं जा सकता। श्रेष्ठ स्थिति किसे कहते हैं? बोलो सीधा सीधा उत्तर, प्रैक्टिकल। अब बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करेंगे आज, बड़ी बड़ी नहीं। श्रेष्ठ स्थिति माना नहीं स्थिति, योग उसका साधन है। स्थिति किसी भी बात से हम डिस्टर्ब ना हो, सूक्ष्म भी प्रभाव ना हो, ये सर्वश्रेष्ठ स्थिति। योग, स्वमान, ऐश्वर्यपन, इसमें बाद में आएंगे, ये सब तरीके हैं स्थिति को महान बनाने के। पर स्थिति का अर्थ है हम अचल अडोल हैं, प्रभाव मुक्त हैं। बोलो भाई बोलो, हम व्यर्थ से मुक्त हैं, व्यर्थ में रुचि नहीं है। बहने बोलो, प्रदर्शन पर चिंतन से मुक्त हैं, उसमें रुचि नहीं है। ये भी साधन है, व्यर्थ से मुक्त होना भी साधन। स्थिति बताओ, हमारी स्थिति एक रस है, परिस्थिति से उपराम है, घरों में रहते, सेवाओं में रहते, बोलो, बहुत खुश रहते हैं, बहुत सरल चित्त रहते हैं, डबल लाइट जिसे कहते हैं, प्योरिटी हमारी बहुत अच्छी है। अब ऊंची स्थितियों के लक्षण, हम स्वयं में भरपूर हैं, संतुष्ट हैं, हम किससे कुछ मांगते नहीं, पैसा भी नहीं, लवली स्थिति है हमारी। जब एक बार छोड़ दिया सब कुछ, फिर उधर मुड़कर नहीं देखते। कई लोग देखते हैं बार बार, छोड़ तो आए पर था तो बड़ा अच्छा, बार बार बुद्धि जाती है उधर। इच्छा कम से कम हो जाएंगी, ये अच्छी स्थिति है। बोझ से मुक्त रहेंगे, हल्के, बहुत खुश होंगे, बहुत खुश होंगे। लगाव झुकाव से मुक्त होंगे, ठीक बात है सब। एक बल एक भरोसा रहेंगे, इसका अर्थ है, एक बल एक भरोसे का अर्थ है स्थिति निश्चिंत, तनाव से, चिंताओं से मुक्त। कहते तो बहुत हैं, बस मेरा तो एक बाबा है, पर बाबा को अलमारी में बंद कर देते हैं, फिर जहाँ सामान रखा रहता है तुम भी यहीं बैठो, काम नहीं चलेगा इससे। हमें उसके बल पर भरोसा है, इसका अर्थ है एक के बल पर भरोसा, तो हम निश्चिंत होंगे, हमें भविष्य का कोई डर नहीं होगा। बहुतों में भविष्य का डर रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए। बहुत तरह के डर हैं मनुष्य के पास, सूक्ष्म डर हैं। बैठो बैठो, यहीं बैठो। सूक्ष्म डर हैं बहुतों के पास, इससे मुक्त हो जाएंगे। जिसके पास आ गए ना, जिसकी शरण में आ गए, जिसने हमें अपनी छत्र छाया में ले लिया, कौन है वो? फिर निश्चिंत। राजा भी आ जाते थे ना दूसरे राजाओं की शरण में, वो पावरफुल है, निश्चिंत होते थे, वो उनकी सुरक्षा करते थे। तो हमारी अच्छी स्थिति बनाने का हमें लक्ष्य रखना है, जो कमियां हमारे पास हैं उनको दूर करने का हमें लक्ष्य होना चाहिए। और एक होमवर्क कर लेंगे आप, जिनको अच्छा पुरुषार्थ करना है, अपनी कमियों की भी लिस्ट निकालो, अपनी महानताओं की, विशेषताओं की भी लिस्ट निकालो। पहले विशेषताओं की निकालना, केवल कमी नहीं, हम में विशेषताएं ज्यादा हैं, कमियां थोड़ी होती हैं। कभी कभी कोई एक कमी पावरफुल होती है, जैसे फीलिंग आना, क्रोध आना, अब वो दिखाई देती है, बाकी जो विशेषताएं हैं वो सब दब जाती है। एक बहन ने बताया, मुझे भूलने की आदत छोटी आयु में, ताला बंद करके आई, चाबी कहाँ रख दी मुझे याद नहीं। कमरे में गई बाबा के, लाइट जला के योग किया, लाइट बंद करना ही भूल गई, वो शायद रात जल रही है, बंद कर देना चाहिए, व्यर्थ का खर्च क्यों करें। फलाना काम वो किया था वो भूल गई, गैस जला के छोड़ी थी वो भी भूल गई, वो जल ही रही है। अब देखिए, बड़ी भूल बड़ी गलती नहीं है, लेकिन बड़ी गलती है भी। तो मेमोरी वीक होना, अब आप ध्यान दें ये स्थिति क्यों बिगड़ती है और क्यों हम चाहते हुए भी अच्छी स्थिति नहीं बना पाते। मैंने पहली बात कही थी कि क्या हम अच्छी स्थिति बनाना चाहते हैं, तो हम उसके लिए टाइम निकालेंगे। साधन उसका योग है, स्वमान है, शरीरीपन है, स्वदर्शन चक्रधारी होना है, पांच स्वरूपों का अभ्यास करना है, मुरली चिंतन, ये सब उसके साधन है, इनसे हमारी स्थिति श्रेष्ठ बनती है। पर इन पे ध्यान कम रहता है। कई जगह बहने क्या करती हैं, ड्यूटी ऐसी बनाई हुई, जब मुरली का समय है तो कपड़े धोने हैं। मैं जरा खुल खोल के बोल रहा हूं, इससे एक मिसिंग होती जाएगी, विशेष मिसिंग, एक अलबेलापन आता जाएगा। मैंने बताती हैं, कुछ पढ़ने को मन ही नहीं करता आजकल, क्योंकि लंबा समय मिस कर दिया है। तो बुद्धि का जो एक रस था अच्छी चीजें पढ़ना, वो रस भी लोप हो गया। तो ध्यान देंगे, अब पांच ऐसी पावरफुल बातें बताएंगे जिनके होते हुए, निगेटिव बातें हैं ये, जिनके कारण स्थिति बनती नहीं है। नहीं, थोड़ा और कुछ बताओ। पांच निकालनी, सो निकल सकती हैं, हमने पांच निकालनी पावरफुल। चलो ज्यादा निकालो, उसमें से पांच चुनेंगे। व्यर्थ, प्रीति, अलबेलापन है, निश्चय की कमी, फीलिंग, लक्ष्य स्ट्रांग नहीं है, चल रहे हैं ऐसे ही। पीछे वाले बता सकते, पीछे वाले चुप, श्रोतागण सभी बताओ, पीछे वाले सुनने वाले बस बोलो। मुरली से ज्यादा सेवा मजा आता है, बहुत हो गया है। मुरली योग तुम करो, हमारा काम सेवा करना। एक तो मुझे कहता था, एक शुरू से यहाँ मुझे बोलता था, वो तुम्हारा काम योग वोग करना, हमारा काम सेवा करना। अब सोचो एक इम्पोर्टेंट बात, वो टीचर की नहीं है, वो गृहस्थ वालों की है, वो ज्यादा माताओं की है। माताएं बुरा तो नहीं मानेंगी, वो भी बूढ़ी माताओं की है। बूढ़े कहेंगे हमारे पीछे आज क्यों पड़ गए भाई। सबका बोझ अपने सिर पे रखने का संस्कार, पहले अपनी चिंता थी, फिर पति की चिंता हुई, फिर बच्चों की, और अब बताओ माताएं सबकी चिंता, बच्चों के भी, बच्चे उनके भी हो जाएं तो उनका भी बोझ सारा दादी माँ के ऊपर है। वो पढ़ते नहीं तो चिंता बूढ़ी माता को है। अभी कहानी सुनो, बहुत सुंदर। माताएं ऐसा नहीं, ऐसी हैं, बहुत योग्य भी हैं। एक माता की कहानी, पौत्री बीमार हुई, वो निश्चिंत रहती है, बहुत अच्छी स्थिति बनाई है। बेटे को कहा ले जाओ हॉस्पिटल, इसे दिखाओ। वो तो ये नहीं कहेंगे तुम भी चलो, वो बूढ़ी है। इसने बैठ के योग किया उसके लिए, वो उसको डॉक्टर के पास ले गए। इसके योग के प्रभाव से जैसे ही डॉक्टर मिला, पहली अपॉइंटमेंट, फर्स्ट क्लास इलाज हुआ, 4 घंटे में ही वापिस आ गए। एक ये स्थिति, ये सच्ची घटना है। दूसरी स्थिति, बुजुर्ग माता है, पोतरा बीमार हो गया, बहुत परेशान, हाय मेरे पोतरे कुछ हो ना, ज्ञानी भी है, कुछ हो ना जाए, बच्चे को जल्दी लेके जाओ, इधर वो चिंता की आग में जली हुई है, कुछ हो ना जाए। जाते ही कहा डॉक्टर तो अभी 2 घंटे बाद आएगा। पहली समस्या, डॉक्टर आया तो भीड़ लगी थी, पहले दूसरों को देखने लगा। दूसरी समस्या, इलाज किया तो आस पास में दवाई नहीं मिल रही थी। चौथी समस्या बढ़ती गई, 3-4 दिन लग गए, बूढ़ी माता भी बीमार होके खाट पे लेट गई। होता है या नहीं ऐसे ही? अब सारी चिंताएं अपने पास रखना है या वो कर्तव्य करना है जिससे उन्हें राहत मिले, बल मिले, सोचना है सभी को। बच्चे को भूख लगी है, खाना बना के खिलाएंगे या परेशान होंगे तुम्हें क्यों भूख लगी? इलाज करेंगे ना, साधन बनाएंगे ना। हम समस्या स्वरूप नहीं, समाधान की सोचा करें। और सबके बोझ अपने सिर पर जो रखते हैं उनका योग लगता नहीं है। थोड़ा सा ज्ञान स्वरूप होना होगा, जिसे बाबा रोज मुरली में कह रहे हैं स्वदर्शन चक्रधारी बना। आप देखेंगे ये बात रोज आ रही है। और बाबा की मुरलियों को आप इस ध्यान से सुने कि बाबा हमें स्मृति स्वरूप बना रहे हैं। सारे ही ज्ञान का सार स्मृति स्वरूप होना। मुरली में आ चुका, व्यक्त मुरली में संडे को। अर्जुन की बात लो, आपको याद रहेगी बहुत, जो कुछ गीता में है। मोह हो गया उसे, युद्ध से उसने इंकार कर दिया, सामने उसके बड़े बड़े लोग खड़े हैं, भीष्म पितामह जिसकी गोद में वो खेला, जो द्रोणाचार्य जो उसका गुरु है और जिसने बहुत प्यार किया है उसे, और भी कई लोग। मोह हो गया, लड़ाई नहीं करूंगा। अब उसे ज्ञान दिया, पहला ही ज्ञान, तुम आत्मा हो, ये सब आत्माएं हैं। ये ज्ञान हमें दिया ना बाबा ने, न तुम किसी को मारते हो न ये मरते हैं। एक ज्ञान दिया। दूसरा ज्ञान दिया, मुझे याद करो, ये बहुत अच्छा ज्ञान है गीता में, कर्म है। तीसरा कहा, तुम यदि युद्ध नहीं करोगे मैं महाकाल बनकर आया हूं, ये सब मेरे द्वारा मारे जाएंगे, इसलिए तुम यश प्राप्त करो। फिर कहा, तुम युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे जो क्षत्रियपन के संस्कार हैं वो तुम्हें युद्ध करने के लिए विवश करेंगे, तुम्हें करना ही पड़ेगा, इसलिए करो। अंत में अर्जुन क्या कहता है, हे भगवान मुझे स्मृति आ गई है, मेरा मोह नष्ट हो गया है, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। मैंने 2 मिनट में आपको बात बताई। बाबा भी हमें स्मृतियां दिला रहा है। हम कुछ चीजों को स्मृतियों में रखें, इसको कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी होकर रहे। सभी आत्माएं हैं, पहली स्मृति, मैं आत्मा हूं केवल ये नहीं, सब आत्माएं हैं, सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, सब हम सबको ज्ञान है ये, इसको स्मृति में रखना। और अच्छी बात स्मृति में रखनी है, इन सभी आत्माओं का भाग्य अपना अपना है। आप अपने घरों में अपने साथियों को, परिवारों को, बहने भी जो समर्पित हैं उनके परिवार हैं, उन सबको देखो, सबका भाग्य अपना अपना है, सबका कर्मों का खाता अपना अपना है, सबको खुद चुकतू करना है, हमें नहीं, सबको खुद स्मृति में रखना है ये, तो हम नष्टो मोहा होते जाएंगे। टाइम लगेगा इसमें, और अगर अब नष्टो मोहा ना हुए तो सबसे ज्यादा कष्ट मोह के कारण होगा, क्योंकि जो कुछ होने जा रहा है, मुझे याद रहता है महाभारत युद्ध से पहले वेद व्यास हस्तिनापुर में महलों में आए, और जो तीन माताएं थी, धृतराष्ट्र की माँ, पांडु इनकी अंबिका, अंबालिका और सत्यवती, सत्यवती दादी थी ना, सुनी होगी आपने, उन तीनों को कहा वेद व्यास ने, अब जो कुछ इस सृष्टि पर होने जा रहा है उसे तुम देख नहीं पाओगी, इसलिए मेरे साथ अब वन में चलो। तीनों ने तैयारी की, तीनों वन में चली गई, उसके बाद महाविनाश हुआ। ये नहीं कौरवों के सब कुछ मरे, पांडवों के बहुत मर गए, तो महाविनाश हुआ। उसके बाद का वर्णन तो बहुतों को पता ही नहीं, भारत में वो पढ़ा ही नहीं जाता कि जब महाभारत युद्ध हो गया तब पांडवों का हाल क्या हुआ। युधिष्ठिर कहने लगा श्री कृष्ण को, मुझे नहीं चाहिए ये राज्य, क्या करूंगा, सब मारे गए हैं, हमारे भी और उनके भी सब मर गए हैं, ऐसे राज्य को हम क्या करें, वैराग्य हो गया, बहुत टाइम लगा उनको नॉर्मल होने में, क्योंकि सब कुछ नष्ट हो गया था, धन संपदा, तब पता क्या हुआ था, किसी ऋषि ने या वेद व्यास ने पांडवों को कहा, तुम्हारे पुरखों ने हिमालय में फलानी जगह बहुत धन छुपाया था, वो उस जगह है, जाओ पूजा पाठ करो, वहां मंत्र करो और उस धन को ले आओ। वहां से शुरू हुआ फिर राज्य इनका। तो बाबा भी हम सबको याद दिला रहे हैं, विनाश कोई छोटी घटना नहीं होने जा रही है, अति भयानक, जिसकी हमें कल्पना भी नहीं है, किसी को नहीं है, हम में से किसी को नहीं है। मेरे पास माताएं बहनें आती हैं, भाई आते हैं, इसी ग्रुप में जो अब था हमारे यहाँ दो ऐसे लोग आए बेचारे, यंग लड़का, देखो एक की कहानी, आज ही गए वो, बहुत अच्छा परिवार, धन संपदा, कहा लड़का बड़ा 23 साल का, सवेरे उठे हैं सब, हाथ मुंह धो के नहा के फादर के साथ बैठा है कुर्सी पे, बात कर रहा है, आराम से बातें हो रही हैं, अचानक बोला, पापा आंखों के आगे अंधेरा आ गया है, और गया 5 सेकंड, बस इतना कहना था कि अंधेरा आ गया है और गया। अब कल्पना करो इस बात की, हाँ बस, तो माँ का हाल बेचारी का, कल मेरे से मिल रही थी शाम को, मैं घूम रहा था बाहर, क्या करे, हल्के तो हो गए थे यहाँ के, अभी की घटना है, उसके कारण ज्ञान लिया 1-1.5 मास से, तो देखो गति भी है कुछ, भगवान से मिलने के लिए कुछ गया, उससे पहले तो वो आ ही नहीं सकते थे। एक दूसरा है, उसका पति गया, ऐसे ही पति जाते ही ज्ञान लिया, तो ये कर्मों का बड़ा गहरा खेल चल रहा है। ये छोटी घटनाएं हैं, जब संसार खाली होगा सोचो क्या होगा, संसार खाली होगा। बचेंगे कौन? केवल फरिश्ते, सबको देने वाले महान आत्माएं, श्रेष्ठ योगी, वो बचेंगे। उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी इस धरा पर, सबको लाइट देने के लिए, सहारा देने के लिए। आप मुरलियों की स्टडी करो, अभिव्यक्ति सब है। एक और महाविनाश होगा, दूसरी ओर देवियां दिखाई दिया करेंगी, फरिश्ते, सब लोग शांत होंगे। हमारे सहारा दाता आ गए हैं, हमारे मुक्ति दाता आ गए हैं। वो सब दिखाई देने लगेंगे उन्हें, हम सब के स्वरूप में उनका स्वरूप दिखाई देने लगेगा, जिसकी जिसमें भावना रही है। तो ऐसी महान आत्माओं की यहाँ उपस्थिति रहेगी, तो हमें अपनी स्थिति को श्रेष्ठ बनाना है। जिसको बातों में रहने की आदत है वो आगे आप बोलो, जहां बातें हैं वहां बाप नहीं। ये बात सब जानते हैं, पर माताएं अगर 4:45 योग से उठ के गई हैं तो कमरे तक जाने तक बात ही करती रहेंगी। आते हुए कम करती हैं, पर जाते हुए ये नहीं बात करती आज अनुभव क्या हुआ योग में, पता नहीं क्या क्या याद आ रहा है। फिर बातों में रुचि, बोलो इसको खत्म किया जा सकता है? पहले माताएं बताएं, हाँ या ना? कर सकते हैं, करें सभी। ये किसी के कहने से नहीं होगा, भगवान ने भी कह दिया, सभी कह रहे हैं, आप भी जानते हैं। ये स्वेच्छा से होगा, और ये तब होगा जब हम अपने जीवन के लक्ष्य को बोलो महान बना लें, जब हमें पता हो कि श्रेष्ठ स्थिति से ही हम अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, अपने प्रियजनों को मदद कर सकेंगे। अगर श्रेष्ठ स्थिति नहीं होगी हम भी दुखी होंगे, फिर दुख कौन निवारण करेगा? श्रेष्ठ स्थिति का महत्व समझना है, न केवल वो हमारे लिए है कि हमें कष्ट नहीं होगा, हमारा देह आराम से छूटेगा, लेकिन जो भी प्रियजन हैं, जिनको आप बहुत प्यार करते हैं, जिनकी आप भलाई चाहते हैं, उनके लिए आप कर सकेंगे यदि स्वयं में योग की शक्ति होगी। मैंने बाबा की ये बात बहुत पकड़ के रखी बहुत सालों से, आने वाले विनाश के समय में सेवा उन आत्माओं के द्वारा होगी जिन्होंने बाबा के सर्व खजाने जमा किए होंगे। खजानों को आप जानते हैं, और जो खाली होंगे उन्हें बहुत पश्चाताप होगा। तीसरा चले, कौन योगी नहीं बन सकते? सीधा उत्तर, सीधा प्रश्न, बाह्य मुखी हैं, बिल्कुल ठीक। और सुशील तुम बता दो, हैं? हाँ, जो झंझटों में जाते हैं। सच तो ये है किसी मनुष्य को झंझट है नहीं, उसने अपना चक्रव्यूह स्वयं बना लिया है। पंच सरपंच के क्या, पंचों के सरपंच, परपंच के सरपंच है वो, ठीक है। और सोचो, हाँ ये प्रैक्टिकल उत्तर है, जो फोन पर बड़ा सा है ना आजकल 20,000 का एंड्रॉइड, उस पे ज्यादा रहते हैं। बहुत रुचि हो गई है लोगों को, इन्फॉर्मेशन मिलती है, ज्ञान नहीं मिलता। आगे आ जाओ बहनों, आगे आ जाओ, जो नीचे बैठ सके इधर बैठो। ज्ञान नहीं मिलता, कोई सोचे व्हाट्सएप पे ज्ञान मिलता है? व्हाट्सएप से मिलता तो भगवान क्यों आता फिर? इन्फॉर्मेशन, और आधी इन्फॉर्मेशन गलत, दिमाग को कंफ्यूज करने वाली, व्यर्थ को बढ़ावा देने वाली, इसे ये सब चीजें हैं, इनका प्रयोग थोड़ा करना चाहिए। हम भी करते हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ सेवाओं के लिए बस। ज्यादा जो इसमें लगे हुए हैं उनकी बुद्धि की शक्तियां नष्ट हो रही हैं। सभी को एक सूक्ष्म चीज मालूम होनी चाहिए, हमारे ब्रेन में, मैं ब्रेन की चर्चा कर रहा हूं, मुझे ज्यादा मेडिकल नॉलेज तो नहीं है, अरबों सेल्स हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, वो तो अनंत हैं। हमारे हर संकल्प का प्रभाव इन पर पड़ता है, हर संकल्प का, बहुत गहरी बात है, उससे बीमारी बढ़ती है या नष्ट होती है। इसलिए खुश रहना, सुंदर विचारों में रहना, बहुत अच्छी पवित्रता रखना, चित्त को शांत रखना, ये बहुत बड़ी चीज है हेल्थ के लिए भी। एक और चीज सबको ध्यान पे रखनी है, स्थिति किन की नहीं बनती। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात तो बहुत सुंदर है, इसको हम अब डिटेल नहीं कर रहे हैं। स्थिति उनकी नहीं बनती जो पाप बहुत करते हैं, जिन्होंने ब्राह्मण बनकर भी पाप किए, सूक्ष्म मोटे भी किए पर सूक्ष्म, जिन्होंने दूसरों को तंग किया, दूसरों की खुशी छीनी, दूसरों को आगे नहीं बढ़ने दिया, उनके रास्ते रोक लिए, ब्लॉक कर दिया, कटु वचन बोलकर दूसरों को परेशान किया, वो भी योगी नहीं बन सकते, उनकी स्थिति भी नहीं बनती, वो भी खाली रह जाते हैं। जिनके साथ दुआएं हैं सबकी, अब इसका विपरीत, दुआएं, जिनकी तरफ सबकी प्यार की दृष्टि रहती है, देखो किसी को सब प्यार से देखते हो उसका जीवन, और किसी को देख के सब ऐसे ऐसे करते हो तो उसका जीवन, अंतर होगा ना। तो हम सूक्ष्म पापों से बचें। कलयुग से जो लोग हमारे पास आ रहे हैं, बाबा के बच्चे बन रहे हैं, बहुतों का जीवन कैसा होता है, अति पाप में, खाया पिया भी गंदगी से भरा हुआ जीवन, न जाने बिजनेस में भी क्या क्या कर लिया, बहुत सारे पाप आजकल लोग कर रहे हैं, और बुद्धि इतनी कैसी हो गई, तमो प्रधान, कि उन्हें पता ही नहीं कि वो पाप भी कर रहे हैं, एंजॉयमेंट समझते हैं इसको। फिर ज्ञान में आने के बाद उनको योग में कठिनाई होती है, मैं देखता रहता हूं, कुछ माताएं आती हैं जिनका जीवन बहुत स्वच्छ रहा, फटाफट योगी, मेरे पास दो चार माताएं आती ही रहती हैं ऐसी, बहुत अच्छी स्थिति, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, सभी झंझटों से मुक्त, लक्ष्य मिल गया, भगवान मिल गया, अब बाकी बातें नहीं, वो तो सारा संसार कर रहा है, अब हमें तो वो करना है जो केवल अब ही किया जा सकता है, अब के अलावा जो दोबारा मौका नहीं मिलेगा, ये मौका मिस कर दिया फिर इसकी तलाश रहेगी, इंतजार रहेगी युगों तक। इसलिए नेक्स्ट बात है, अपने से बहुत अच्छा चिंतन करें, अपने को खुद प्रेरित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और मैं ये आपको अनुभवों से कहना चाहता हूं, मेरा ही नहीं बहुतों का, आपको कोई पुरुषार्थ नहीं करने देता है, इसका कोई महत्व नहीं, करने वालों को कोई रोक नहीं सकता। ऐसी भी माताएं हैं, सब सो जाते हैं बाथरूम में बैठ के, मुरली पड़ती है, हैं या नहीं, आप में से कईयों ने किया होगा। ऐसी भी बहने हैं, ठीक है योग नहीं करने देते, रात को जाग के योग कर लेते, जब वो सोए हुए तब योग कर लिया, फिर सो गए, उन्हें पता ही नहीं कि इन्होंने कर भी लिया क्या। करने की श्रेष्ठ इच्छा, उसका सुख, उसके लाभ, कि हमें भगवान की आज्ञाओं पर चलना है, मनुष्यों की आज्ञाओं पर नहीं, मनुष्य तो रास्ता रोका ही करते हैं, बाबा रास्ता साफ करता है, एक द्वार बंद हो हम दूसरा ढूंढ सकते हैं। इसलिए ज्ञान का चिंतन, मुरली का बहुत अच्छा रस, ये बहुत जरूरी है श्रेष्ठ पुरुषार्थ के लिए। समय अपने को देना है, मुरली आएगी अभी साकार। बच्चे योग के लिए अपने को समय दो, क्योंकि ये स्वयं की उन्नति है। विकर्मों का बोझ यदि हमारे सिर पर है और वो न उतरा तो बाबा ये तो नहीं पूछेगा ना, तुम्हारे साथी ने तुम्हें योग करने नहीं दिया, तुम्हारे इंचार्ज ने तुम्हें योग नहीं करने दिया, चलो माफ कर देता हूं, चलेगा काम? वो बाबा के हाथ में भी नहीं होगा, वो तो ऑटोमेटिक है। जो विकर्म रह गए उसका फल है, ऑटोमेटिक है, वो कंप्यूटराइज है। जैसा रह गया उसका फल मिलना ही है। इसलिए अपने लक्ष्य को सभी महान बनाएं और समय की नाजुकता को पहचानें। ये बीच का समय है, मैं बहुत बार सुनाई है ये बात, बहुतों ने तो नहीं सुनी क्योंकि सब तो क्लास नहीं सुनते नेट पर भी। जैसे सेवाएं शुरू करने से पहले यज्ञ को परीक्षाओं से गुजारा गया था शिव बाबा के द्वारा। कौन सी परीक्षाएं थी? बैगरी पाठ की। ऐसे ही अब जय जयकार से पहले भी परीक्षाओं का दौर चल रहा है। इसमें लाखों ब्राह्मण फेल होके वापिस चले गए कलयुग में, चले गए हैं 3-4 साल में, नए बहुत आ जाते हैं इसलिए पता नहीं चलता, पर बहुत मैदान छोड़ गए, युद्ध के मैदान से पलायन कर गए हैं, बहुत थक के, अपने बस का नहीं है अब युद्ध करना, चलो घर, वहीं राजी ठीक थे हम तो। निश्चय की परीक्षा, समय को बाबा ने पूरा छुपा दिया है। कई सोचते हैं पता नहीं विनाश होगा भी या नहीं, सत्युग आएगा भी नहीं, ये सत्य है या ऐसे ही बाबा चला रहा है? बाबा चलाया करता है क्या? चलाने वाले तो बहुत लोग हैं दुनिया में। भगवान समय को गुप्त रखता ही है, ये बाबा ने बता दिया था, 1 मिनट पहले भी कुछ नहीं बताया जाएगा। समय को अपनी सूक्ष्म स्थिति से स्वयं पहचानना है, और समय की गति बड़ी सूक्ष्म है। संसार में भी समय की गति ही सूक्ष्म होती है, इसको सब नहीं जानते। समय बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सारे दिन में भी, मैं आपको एक छोटा सा रहस्य बता दूं, सारे दिन में भी कोई एक सुंदर समय हर मनुष्य के पास आता है, कोई उसे पहचानते हैं, कोई मिस करते, सभी मिस करते हैं। वीक में एक दिन बहुत सुंदर होता है सबके लिए, किसी के लिए कोई, किसी के लिए कोई। मास में 2-4 दिन सुंदर होते हैं, साल में और कई दिन सुंदर होते हैं, और जीवन में, पूरे जीवन में एक बार कोई बुरा समय भी बहुत आता है, बहुत बुरा, हरेक के पास। वो आप ही नहीं आता है, वो कर्मों का खेल, लेकिन एक बार आता है, सबको हिला डालता है, परीक्षा ले लेता है, और सुंदर समय भी आते हैं, केवल बुरे ही नहीं। तो हम समय की सूक्ष्मता को पहचाने। रोज के जीवन में हमारे लिए सबसे सुंदर समय हम सब जानते हैं कौन सा? अमृत वेला मुरली तक। इसको जो जितना जान ले, जो जितना इसका फायदा उठाए, वो उतना ही बुद्धिमान। जानते बहुत है पर किसी न किसी कारण से फायदा नहीं उठा पाते। 12 बजे सोते हैं रात को, टीवी देखते हैं या मोबाइल पे कुछ देखते हैं, सबसे बुरी माया है या नहीं? माया, मैं कह रहा हूं या आप भी कहेंगे? है भाई, हमें तो बिना रात को मूवी देखे नींद आती ही नहीं। एक भाई थे, रात को लता के गीत जब तक न सुने नींद आती ही नहीं थी। ऐसे ही कईयों का हाल हो गया है, सवेरे उठना इतना, बहुत दिन उठ के देख लिया, कुछ तो होता नहीं, छोड़ो फिल्में देख लो रात को, बहुत बड़ी, मैं एक खराब शब्द बोलना चाहता हूं, दुर्बुद्धि। जिसकी बुद्धि नष्ट कर दी है माया ने, वो ऐसा सोचते हैं। अमृत वेले तो भगवान हम पर राजी रहता है, उठना ही काफी नहीं, उस समय का पर्याप्त लाभ लेना। बाबा ने सीन दिखाया था, बहुत अच्छी एक किताब छपी है अव्यक्त संदेश, मोटी किताब है, आप ले लें उसे। उसमें बहुत सालों के गुलजार दादी के द्वारा लाए गए संदेश हैं। मैं कहीं से भी खोल के पढ़ता हूँ, मुझे तभी दे दी थी जब वो छप रही थी, अभी एक दो को भी छपी तो मुझे मिल गई। बहुत सुंदर एक बात हुई कि सवेरे दादी बाबा के पास गई तो ब्रह्मा बाबा खड़े थे, शिव बाबा दिख रहे थे उनके मस्तक में और लाइट फैल रही थी जैसे किरणें जा रही हों अलग अलग दिशा में। बहुत देर तक ये सीन चलता रहा, शांत हुआ सीन। बाबा ने दादी ने पूछा, बाबा आप क्या कर रहे थे? सवेरे सवेरे बाप अपने उन बच्चों को ये करंट देता है जो बुद्धि खोल कर बैठते हैं, स्थिर होकर बैठते हैं। बहुत सुंदर ये विजन है, परमधाम से भी देख सकते हैं शिव बाबा की किरणें। वो किरणें डाल रहा है अपनी, हम किरणें ले रहे हैं ये नहीं, वो डाल रहा है हम सब पे। सवेरे ये काम होता है, बहुत वरदान भी देता है, हमें हमारी समस्याओं का हल भी सुझाता है और अगर हम उसको समर्पित कर दें तो उनको हर भी लेता है। हम कितने उसके प्रिय हैं, हम कितने सच्चे हैं, हम उसके लिए क्या करते हैं, इस पे निर्भर करता है बहुत सारा खेल। तो संगम युग अब अंतिम परछाइयां डाल रहा है और अति सुंदर समय आ रहा है। सभी मुरलियों में ध्यान से सुनते होंगे, बाबा अपने बच्चों को साक्षात्कार में इतना बिजी कर देगा कि विनाश कब हो गया पता ही नहीं चलने देगा। 5-7 साल ऐसे बीत जाएंगे, उधर खाली हो गया है, इधर ये मस्त रहेंगे। किसी को सतयुग में रखेगा, किसी को सूक्ष्म लोक में, किसी को यहाँ डिवाइन बना देगा, ये खेल चलेगा। लेकिन किन को होगा ये सब सोच लो, जो योग युक्त होंगे, बाकी देखने वाले होंगे, कुछ साक्षात्कार करने वाले होंगे और कुछ हो जाएंगे कराने वाले, दृष्टि देंगे और दूसरे साक्षात्कार करने लगेंगे, इस शरीर में ही सामने ही करने लगेंगे। जिन्होंने अपनी पावरफुल स्थिति बनाई है वो लोगों को हनुमान दिखाई देने लगेंगे। हनुमान की भक्ति बहुत हो रही ना, उनके भगत अपने इस देव से मिल लेंगे, हमारा इस देव मिल गया, तृप्त हो जाएंगे लोग। और हनुमान साथ में है तो फिर चिंता ही नहीं होगी, किसी को दुर्गा देवी दिखाई देने लगेगी, किसी दीदी में दिखाई दे, किसी को माँ काली दिखेगी। जो जिसके भक्त हैं, माँ काली बाबा ने कह दिया वैसी काली नहीं है, वो तो दिखेगा भावनाओं से, उन्हें लगेगा हमारी देवी हमारे साथ है, बस मस्त हो जाएंगे। ऐसे बाबा समय को पास कराएगा, लेकिन खेल चलेगा सबके कर्मों के हिसाब किताब चुकतू करने का। धर्मराज पूरी सूक्ष्म लोक में नहीं होगी, नीचे ही होगी, ये विनाश काल ही धर्मराज पूरी भी होगा। हर एक को जो बाबा कहते हैं ना, मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा, इसका अर्थ है कि जो श्रेष्ठ योगी हैं उन्हें अंत में दिखाई देगा बाबा आ गए, कहा चलो चले गए। बाकी को यमदूत लेने आएंगे, यमदूत भी तो एक्टिव हो जाएंगे ना, उनकी कहीं गिनती है नहीं ऊपर के, यहाँ यमदूत रहते हैं, धर्मराज भेजेगा तुम उसे लाओ तुम उसे लाओ। ये साक्षात्कार होंगे कि दो यमदूत आ गए भयानक, अभी उनको देखते ही कष्ट हो गया है, अब चलो। ये कहेंगे हम नहीं जाएंगे, वो खींचेंगे, ये होंगी सजाएं। तो ये सब खेल यहीं चलेगा, हर एक के अंत में ये फीलिंग्स ये दृश्य सबको अपनी अपनी स्थिति अनुसार दिखाई देंगे। तो हम सभी को एक बात बाबा बहुत कहते हैं ना मुरली में, अंत में एक मेरे सिवाय कोई याद ना आए। लेकिन ये कठिन काम है, एक याद होगा तो बस वो आ जाएगा। जो दिखाते हैं ना शास्त्रों में, पुष्पक विमान आ गया, इंद्र आ गया लेने, देवताएं लेने आ गए, लाइट ही लाइट हो गई, ये सब साक्षात्कार होंगे अंत में अपनी अपनी स्थितियों के अनुसार। तो सभी अब अपने को मुक्त करें, अंत में मुक्त नहीं, यहीं से मुक्त करना शुरू कर दें। लिस्ट बनाना किन किन चीजों ने हमें बांध के रखा है, उन्होंने हमें बांधा है या हम बंध गए हैं बिना मतलब। रस्सियां तो थी, हम ही घुस गए, बंध गए उसमें। ये बहुतों के साथ हो रहा है, बंधे नहीं हैं, बस अपने को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। निकलना एक सेकंड का काम है और इसके लिए अभ्यास है ऐश्वर्यपन का। एक एक रस्सी को तोड़ने की जरूरत नहीं। आज भी मुरली में था ना, देह से डिटैच होते जाओ तो शांति होती जाएगी, देह से न्यारे होते जाएं, सभी बंधनों से न्यारे होते जाएंगे, मोह ममत्व भी छूटता जाएगा। तो रोज की मुरली हमारे लिए गाइडलाइन है, राह दिखाने वाली है, हम उस पे ही चलते रहें, हमें किससे कुछ पूछने की जरूरत नहीं कि क्या करें। बाबा रोज मुरली में सुंदर गाइडलाइन दे रहा है, उसी दृष्टि से मुरली सुनेंगे, स्वमान पे ध्यान देंगे, योग अभ्यास पे ध्यान देंगे और इन धारणाओं पे ध्यान देंगे, हमसे कोई सूक्ष्म पाप अब हो न रहा हो, नहीं तो उसकी सजा 100 गुनी ज्यादा होती है। हमने किसी को डिस्टर्ब किया है, हम डिस्टर्ब रहेंगे ही, कोई नहीं बचा सकता। तो सभी अब लक्ष्य बना लें, अच्छे पुरुषार्थ के अंतिम दिन चल रहे हैं, इसके बाद ये मौका नहीं मिलेगा संगम युग पर, फिर कुछ और समय आ जाएगा, एक ओर जय जयकार दूसरी ओर हाहाकार। तो हम किस में हिस्सा लेना चाहते हैं, 2 लाइन लगेंगी, प्राप्ति वालों की, पश्चाताप वालों की। हम किस लाइन में खड़े होंगे ये सब स्वयं सोचें। और बाबा के शब्द 200 नाखूनों का जोड़ लगा दो बच्चों, रजाई लेने के लिए, ठीक है, ऐसा चिंतन करेंगे। ओम शांति। हाँ बस यही है कि हम अभ्यास चालू रखें। चलो बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको। सभी बहनें माताएं भाई ऐसे ही अभ्यास करेंगे।
प्रेम से बस दो घड़ी, प्रभु का ध्यान कीजिए, प्रभु का ध्यान।